अजितांतराम अजित या भगवान विष्णु को अपने भीतर रखने के कारण विरोचयंतीम प्रकाशित करती हुई भवनम घर के समूचे वातावरण को शुचिस्मिताम हंसती हुई तथा तेजस्वी आह अपने आप कहा एषः यह परम पुरुष मैं मेरा प्राण हरः मेरी जान लेने वाले हरि ही भगवान विष्णु ने गुहाम देवकी के गर्भ में ध्रुवम निश्चित रूप से श्रितः शरण ली है यत क्योंकि न नहीं थी पुरा पहले इयम देवकी ईदृशी इस तरह। तो अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिधाम स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। तो प्रसंग इस प्रकार से है कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं और वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में और फिर देवकी के गर्भ में भगवान जो है प्रकट हो चुके हैं और देवता लोग आने वाले हैं प्रार्थना करने के लिए। और उस समय जो कंस है देवकी को कारागार में देख रहे हैं कि और देख करके वे बहुत ही आश्चर्यचकित हो रहे हैं और डर भी रहे हैं। ताम वीक्ष्य कंस प्रभया जितांतराम, जो कंस है देवकी को देख कर कि प्रभया जितांतराम कि प्रभया कि अजित अंतरम कि भगवान को अपने घर में रखने के कारण जो उसकी प्रभा है या जो उसका सौंदर्य है उसका प्रभाव है बहुत बढ़ने लगा है। और विरोच यंतिम भवनम शुचि स्मिताम, और जो देवकी है उस भवन को आलोकित कर रही है, कोई ऐसा ट्यूब बल्ब या वो नहीं है लेकिन स्वयं देवकी के प्रभाव से उसके प्रकाश से। और शुचि स्मिताम, और देवकी हालांकि कारागृह में है और सात पुत्र उनके समाप्त हो चुके हैं तो नॉर्मली वे कभी खुश नहीं रहती थी लेकिन शुचि स्मिताम अभी देवकी बहुत ही खुश दिखाई पड़ रही है। तो ये देख करके कंस समझ गया क्या आहेश में प्राण हर प्राण हरो हरिर गुहाम कि जो भगवान हरि हैं जो मेरे प्राण को हरने वाले हैं निश्चित रूप से वो जो है इस के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, निश्चित रूप से उन्होंने देवकी के गर्भ में शरण ली है। ध्रुवम श्रुतो यन्न पुरे यमीदृशी, और इससे पहले देवकी कभी भी इतनी तेजस्वी नहीं दिखाई पड़ी, अप्रसन्न नहीं दिखाई पड़ी। तो इस प्रकार से ये कंस का जो क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशन है बेसिकली देवकी को देख करके। और फिर कंस का कंक्लूजन है कि निश्चित रूप से ये कंक्लूजन ये कि देवकी इतनी प्रसन्न क्यों है। तो गर्भ में भगवान के होने से देवकी जिस स्थान में बंदी थी वहां के सारे वातावरण को वे आलोकित करने लगी, उसे प्रसन्न शुद्ध तथा हंसमुख देख कर कंस ने सोचा इसके भीतर स्थित भगवान विष्णु अब मेरा वध करेंगे, इसके पूर्व देवकी कभी भी इतनी तेजवान तथा प्रसन्न नहीं देखी। तात्पर्य भगवान ने भगवद्गीता 4:7 में कहा है यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवते भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानम सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की प्रधानता हो जाती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। इस युग में संप्रति मानव कर्तव्यों के पालन में असाधारण गलतियां हो रही है। मानव जीवन ईश साक्षात्कार के निमित्त है किंतु दुर्भाग्यवश भौतिकतावादी सभ्यता शरीर की इंद्रियों पर जोर देती है और शरीर के भीतर के प्राण शक्ति को समझने पर नहीं। जैसा कि भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है देहिनोस्मिन यथा देहे, शरीर के भीतर शरीर का स्वामी जो प्राण शक्ति है या आत्मा है जो वो अधिक महत्वपूर्ण है, किंतु मानव समाज इतना पतित हो चुका है कि शरीर के भीतर की प्राण शक्ति को न समझकर मनुष्य बाहरी वस्तुओं में व्यस्त रहता है। मानव कर्तव्यों में यह एक त्रुटि है, इसीलिए कृष्ण ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन के गर्भ में जन्म या शरण ले रखी है। इसीलिए कंस जैसे लोग अत्यंत भयभीत हैं और इस आंदोलन को विशेष रूप से पश्चिमी देशों में रोकने में लगे हुए हैं। एक राजनीतिज्ञ ने तो यहां तक कहा है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन महामारी की तरह फैल रहा है और यदि इसे तुरंत रोका नहीं गया तो यह 10 वर्षों में सरकारी शक्ति को हथिया सकता है। निसंदेह कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ऐसी शक्ति है, जैसा कि अधिकृत लोगों ने कहा है, चैतन्य चरितामृत आदि लीला 17:22 में, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस युग में कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र में प्रकट हुए हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन जंगल की आग की तरह सारे विश्व में फैल रहा है और इसी तरह फैलता रहेगा। कंस जैसे व्यक्ति इस आंदोलन की प्रगति से तथा तरुण पीढ़ी द्वारा इसकी स्वीकृति से भयभीत है, किंतु जिस तरह कृष्ण को कंस नहीं मार पाया उसी तरह यह आंदोलन कंस सरीखे व्यक्तियों के रोके नहीं रुकेगा। यह आंदोलन अधिकाधिक बढ़ता रहेगा यदि इस आंदोलन के नेता विधि विधानों का पालन करते हुए और हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित कीर्तन करते हुए कृष्ण भावना भावित बने रहे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामैहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे। हरे कृष्णा। तो हम इस्कॉन के भक्तों के लिए आज ये बहुत ही शुभ दिन है जिसके अंदर हम श्रील प्रभुपाद के प्रति अपनी कृतज्ञता अपने आभार को प्रकट कर सकते हैं, प्रभुपाद के संघर्षों को याद कर सकते हैं। मेरे को कल रात को शाम को बहुत लेट सर्वज्ञ दामोदरपुर ने बताया, ऐसे तो सुंदर गोपाल प्रभु को आना था कक्षा देने के लिए, लेकिन रात में बहुत लेट से उन्होंने बताया कि उनका थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो ये श्लोक में प्रभुपाद जी जिस प्रकार से अपना रियलाइजेशन बता रहे हैं कि निश्चित रूप से एक भगवान कृष्ण जिस प्रकार त्रेता युग के अंदर देवकी के गर्भ से प्रकट हुए थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण कलयुग में कहां से प्रकट हुए हैं? इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के गर्भ से। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन के गर्भ में जन्म या शरण ले रखी है। तो और हम देखते भी हैं ऐसे लोग बहुत भयभीत होते हैं, बहुत सारा एंटी प्रीचिंग करते हैं, नेगेटिव प्रीचिंग करते हैं कई कई लोग। तो मैं कभी पीछे गया था इलाहाबाद, तो एक वक्त बता रहे कि लोग ऐसे कह रहे कि आप लोगों ने जो है ये युवा पीढ़ियों को प्रचार करके उनका जीवन बर्बाद कर दिया है। कई कई लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि आप लोग इतना ज़्यादा यूथ प्रीचिंग कर रहे हो तो यूथ का लाइफ बर्बाद कर रहे हो। किसी किसी ने तो ये भी बोला कि ऐसे ही किसी ने खुंदक में बोला कि ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग भी धर्म के नाम पे। तो लोगों को बहुत वो मतलब भयभीत रहते हैं या उनको ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है कि इस प्रकार से कैसे कृष्ण भावना में आंदोलन बढ़ रहा है। प्रभुपाद जी इस प्रवचन में बहुत सुंदर चीज बता रहे हैं। तो आज के दिन 52 साल पहले तिथि के अनुसार, ऐसे तो इंग्लिश डेट के अनुसार तो 13 जुलाई 1966 श्रील प्रभुपाद रजिस्टर्ड लीगली प्रभुपाद ने कानूनन तौर पे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ को रजिस्टर किया था, लेकिन तिथि के अनुसार आज की तिथि है, इसलिए भक्त लोग मनाते हैं। और 52 साल पहले प्रभुपाद ने इसकी स्थापना की थी। तो मैं जब जितना भी प्रभुपाद के जीवन के विषय पढ़ रहा था लीलामृत से, तो प्रारंभिक जो प्रभुपाद के मतलब लीलामृत का वॉल्यूम 1 कह लीजिए या प्रभुपाद का प्री वेस्टर्न लाइफ है या मैरिड लाइफ जो प्रभुपाद का था, तो जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से प्रभुपाद कृष्ण भावना में के तो आचार्य ही हैं और भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, लेकिन भौतिक रूप से भी अगर देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद बहुत सारे लाइव अनुभवों से गए हैं, प्रत्यक्ष अनुभवों से, जो कि किसी के भी जीवन को बारंबार डगमगा सकते हैं। और प्रभुपाद के पास क्या क्या अनुभव था, खाली थ्योरेटिकली नहीं सुना था उन्होंने या दूसरों के साथ नहीं देखा था, इसको अपने आसपास अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर देखा था। प्रभुपाद का जो बचपन था वो एक बहुत ही, सभी जानते हैं कि एक महान गौड़ीय वैष्णव तरीके से उनकी परवरिश हुई थी, विशेषकर गौर मोहन डे उनके जो पिताजी थे, उन्होंने उनको बचपन से ही राधा गोविंद की मूर्तियां दी थी, अर्चा विग्रह दिए थे सेवा करने के लिए। प्रभुपाद लीड किया करते थे अपने कॉलोनी के अंदर रथ यात्रा को बचपन के अंदर ही, और वृंदावन जगन्नाथपुरी के लिए ट्रेन को देखा करते थे। और इसके बाद शिला प्रभुपाद ने वो दिन देखे थे, खुद एक्टिवली भाग लिया था कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर, और उस प्रकार के क्रांतिकारी विचार रखने के बाद उससे भी ज्यादा क्रांति उन्होंने देखी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से भेंट के बाद। और उस देश की स्वाधीनता को छोड़ करके उन्होंने जीवों की स्वाधीनता का जो आंदोलन है, ये कृष्ण भावना आंदोलन के जन्म मृत्यु के चक्र स्वतंत्र हो सके, इसमें वे पूर्णतया समर्पित हुए। लेकिन तब तक प्रभुपाद ऑलरेडी विवाहित थे और गृहस्थ आश्रम के धर्म इत्यादि को पालन कर रहे थे, लेकिन साथ साथ उनकी तीव्र इच्छा थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की सेवा करने की। तो जब प्रयाग के अंदर प्रयाग फार्मेसी में थे तब प्रभुपाद जी ने वहां पे बहुत मदद की श्री रूप गौड़िया मठ की स्थापना करने में, और प्रचार किया, धनराशि एकत्र करना, बड़े लोगों को आमंत्रित करना, वहीं श्रील प्रभुपाद की दीक्षा हुई। और साथ ही साथ प्रभुपाद जब मुंबई जाया कर बंबई में अपने कार्य के लिए जाते थे, तो वहां भी उन्होंने बहुत गौड़िया मठ की प्रचार में अपने गुरु भाइयों के, अपने वरिष्ठ गुरु भाइयों की बहुत सहायता की। यहां तक कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यह भी कहा कि समय आने पर या अकेला ही सब उनके गुरु भाइयों ने बोला कि इनको इस गौड़ीय मठ की शाखा का अध्यक्ष बना देना चाहिए, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि नहीं, सही समय आने पर या अकेला ही सब कुछ करेगा। तो प्रभुपाद ने यहां तक देखा था, एक तो खुद वैष्णव परिवार में उनका पालन पोषण हुआ था, तो वैष्णव संस्कृति उनके कह सकते हैं मतलब रग रग में थी, एक प्रकार से कह सकते हैं पूरे ब्लड में थी। और उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे क्रांतिकारी गुरु के प्रति, उनकी सिंह गुरु के प्रति उनका प्रेम और उनकी निष्ठा थी, और फिर प्रभुपाद ने और उनका विशेष स्नेह भी प्राप्त था भक्ति सिद्धांत ठाकुर का, अभय चरणारविंद दास श्रील प्रभुपाद को। और उसके बाद में जब प्रभुपाद ने जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का तिरुभाव हो गया 1936 के अंदर, तब प्रभुपाद ने अब तक प्रभुपाद ने दो चीजें देख चुके थे अपने आसपास में। पहला था प्रथम विश्व युद्ध जो उन्होंने देखा था, और एक विपरीत चीज, और एक देखा था एक इसका अनुभव था उन्हें, और एक दूसरा भारत के जो साथ जितने भी ये स्वाधीनता संग्राम भारत में उसका प्रभाव था। ये सब दो चीज प्रभुपाद ने देखी थी। अब इसके बाद में जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के तिरुभाव के बाद में प्रभुपाद ने दो चीजें और फेस की, कई अब प्रभुपाद के जीवन में जो है बहुत सारे विपरीत परिस्थितियां सो कॉल्ड मेटीरियली अगर देखा जाए, तो प्रभुपाद ने अब प्रभुपाद का परिवार भी था और व्यवसाय करने के लिए मे भी वो पूरा प्रयास कर रहे थे व्यवसाय को सेट करने के लिए, और साथ साथ उनकी तीव्र इच्छा बढ़ती जा रही थी किसमें, इस कृष्ण भावना का प्रचार करने में। लेकिन यहां पे उन्हें क्या विपरीत एक प्रतिकूल परिस्थिति देखी उन्होंने, जिसको अनुभव किया अपने सामने, कि पूरे के पूरे गौड़ीय मठ का विभाजन होते हुए देखा उन्होंने। ये एक बहुत ही क्या कह सकते हैं, किसी के भी हृदय को हतोत्साहित करने वाली परिस्थिति हो सकती है, क्योंकि उन्होंने उस आंदोलन को पूरा बढ़ते हुए देखा था कि किस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरल ठाकुर के नेतृत्व के अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर एक क्रांति आने लग गई थी कृष्ण भावनामृत की। सैकड़ों हजारों युवक इस कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर रहे थे, इसका पालन कर रहे थे और इसका प्रचार कर रहे थे। तो उन्होंने देखा था और कैसे प्रचार की अग्नि गौड़ीय मठ के अंदर थी। और प्रभुपाद स्वयं एक बहुत ही सशक्त और क्रांतिकारी प्रचारक थे। यहाँ पे उन्होंने देखा कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर तिरुभाव होते ही, इनफैक्ट कुछ हद तक तो उनके रहते रहते ही, लेकिन उनके जाने के बाद तो प्रैक्टिकली पूरे गौड़ीय मठ के अंदर प्रचार की भावना मानो समाप्त हो गई हो। और वहां पे जिस प्रकार से ब्रज में आग लगी थी दावाग्नि, उसी प्रकार से पूरे गौड़ीय मठ में एक अग्नि लग गई थी। वो अग्नि क्या थी? विभाजन की अग्नि। विशेषकर तो दो गुट बन गए थे, छोटे छोटे तो बहुत सारे गुट बन गए थे, लेकिन दो प्रमुख गुट और उसके बाद में कोर्ट केसेस, लड़ाइयां और प्रॉपर्टी और धन के लिए, फॉलोवर्स इत्यादि के लिए जो झगड़े उन्होंने लाइव देखे थे। तो यहाँ लीलामृत में लिखा है, प्रभुपाद कभी कभार सोचा करते थे किस ग्रुप में मैं जाऊं, ग्रुप इसमें इस ग्रुप में कौन सही है। और वहां लिखा है लीलामृत के अंदर कि दोनों ही गलत है। दोनों ही ग्रुप गलत क्यों है? क्योंकि हो सकता है वे सही हो अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने आर्ग्यूमेंट के अंदर, लेकिन दोनों ही गलत हैं। क्यों? क्योंकि जो असली कार्य है बद्ध जीवों का उद्धार करना, वो समाप्त हो गया है। और उस विभाजन का सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? ना तो गौड़ीय मठ को हुआ, ना शायद गौड़ीय मठ के सदस्यों को हुआ होगा, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ बद्ध जीवों का, कि आपस के झगड़े के कारण उन बद्ध जीवों के उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए अन्य कोई उपाय नहीं बचा था। तो ये जो है, प्रभुपाद ने साक्षात इसको देखा था कि किस प्रकार चाहे वे सन्यासी हों, गृहस्थ हों, ब्रह्मचारी हों, किस प्रकार इस शासन कह सकते हैं या अधिक पद को संभालने के लिए या नेतृत्व करने की जो इस भावना के लिए जो झगड़ा था, उस झगड़े ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पूरे आंदोलन को ही जड़ से ही उखाड़ दिया था प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो। तो ये श्रील प्रभुपाद ने लाइव देखा। जय श्री राधा रानी करण भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा महारानी की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय। तो ये प्रभुपाद ने व्यक्तिगत रूप से देखा था एक आंदोलन को बढ़ते हुए और उस आंदोलन को का विभाजन होते हुए। इसके बाद प्रभुपाद ने द्वितीय विश्व युद्ध देखा, जहां 4 साल के अंदर हजारों लाखों लोग मारे गए, और श्रील प्रभुपाद ने भारत के विभाजन को भी देखा। वहां लिखा है, क्योंकि प्रभुपाद भी एक समय गांधी आंदोलन को समर्थन करते थे, तो लिखा है कि गांधी जी की हालांकि योजना थी कि भारत को एकजुट बनाने की, लेकिन वो तो समाप्त हो गई और भारत की स्वतंत्रता के साथ क्या हुआ? विभाजन हुआ। और सबसे पहले दंगे जो चालू हुए थे, क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूं, इस बात को प्रभुपाद ने देखा था, पूरे भारत में चालू होने से पहले सबसे जो प्रथम दंगे हुए थे वो कलकत्ता में ही चालू हुए थे, और 4 दिन के अंदर लगभग कोई 8-10 हजार लोग मारे गए थे उन दंगों के अंदर। और उसके बाद तो फिर पूरे भारत के अंदर ही हिंदू मुसलमान दंगे चालू हो चुके थे, लेकिन प्रभुपाद ने लाइव ये सब चीज देखा था। और साथ ही साथ अब क्या हो रहा था कि प्रभुपाद जी जो अपना व्यवसाय बनाने का प्रयास कर रहे थे, तो उनके पास एक बहुत बड़ी चुनौती आ रही थी। वो चुनौती क्या थी? उनके अपने परिवार से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। प्रभुपाद जी चाहते थे कि उनकी जो श्रीमती हैं, राधा रानी नाम था उनका, वे उनका समर्थन करे, घर में लोगों को आमंत्रित करे और प्रसाद बनाए, उनको प्रसाद दिया जाए, कीर्तन हो। लेकिन जब प्रभुपाद जी अपने घर के अंदर ये कार्यक्रम खुद भी किया करते थे जब गृहस्थ आश्रम में थे, और यहाँ पे मंदिर से आने वाले इसे लिखा है कि नहीं, ब्रह्मचारी सन्यासी के नेतृत्व करने की आवश्यकता भी नहीं थी, प्रभुपाद स्वयं कर सकते थे और कर भी रहे थे। लेकिन जब प्रभुपाद एक कमरे के अंदर बैठ के अन्य लोगों को प्रवचन किया कर रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं, उस समय क्या होता था, उनकी जो श्रीमती हैं, पत्नी हैं, धर्म पत्नी हैं, और अपने बच्चों के साथ क्या करती थी, दूसरे कमरे के अंदर बैठ के चाय पीते थे। तो ये प्रभुपाद के लिए, और इतना ही नहीं कि आध्यात्मिक रूप से उनके परिवार वाले उनके साथ नहीं थे, और एटलीस्ट लीलामृत के व्याख्यान के अनुसार तो उनकी रुचि जो कारोबार था उसके अंदर भी नहीं थी। तो प्रभुपाद को लगता था कि मैं क्यों ये बोझा ढो रहा हूं ना, जब इनको ना तो कारोबार की रुचि है और ना आध्यात्मिकता में रुचि है। फिर भी प्रभुपाद, तो प्रभुपाद की एक तरह तो प्रगाढ़ इच्छा हो रही थी, इधर परिवार भी एक तरीके से अलग है उनसे, इधर गौड़िया मठ भी अलग होते जा रहा है, लेकिन प्रभुपाद के पास जो था, जो उनकी संपत्ति थी, वो क्या था? उनकी तीव्र इच्छा भक्ति सिद्धांत ठाकुर की इच्छाओं को पूरा करने की। ये प्रभुपाद का असली धन था। और ऐसा करते हुए बाद में प्रभुपाद जी ने जो है वानप्रस्थ लिया, फिर वृंदावन में आके कौन सा मंदिर था वो, वंश राधा दामोदर मंदिर से पहले एक, और वंशी गोपाल मंदिर आई थिंक, वंशी गोपाल मंदिर के अंदर प्रभुपाद वहां रुके थे, बाद में राधा दामोदर मंदिर के अंदर। और बैक टू वर्ल्ड मैगजीन के लिए प्रभुपाद ने बहुत संघर्ष किया। इनफैक्ट ये वर्णन अभी तक मैंने किसी भक्त से नहीं सुना था, लेकिन लीलामृत में लिखा है कि एक समय सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में स्वतंत्रता के टाइम पे उनके पेपर को बंद कर दिया था। जानते हैं किस लिए? कि पेपर की कमी है इसीलिए, है ना, तो पेपर छापना। और तब प्रभुपाद ने एक बहुत लेटर लिखा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, बोला कुछ नहीं तो कम से कम एक पेपर, मतलब एक पेज का ही मुझे समाचार छापने दीजिए चाहे, और वो जो अवधि आप बोलेंगे, साप्ताहिक या मतलब क्या पाक्षिक बोलते, फोर्टनाइटली, 15 डेज के अंदर या महीने के अंदर, लेकिन इसको इसके ये पेपर का या कागज का अपव्यय नहीं है ये, तो ऐसा लिख के। और तब प्रभुपाद को परमिशन मिली कि हाँ वो बैक टू वर्ल्ड को दोबारा चालू कर सकते हैं। दोबारा चालू किया, प्रभुपाद लिखते थे, छापते थे, बांटते थे, लेकिन अब छापने बहुत संघर्ष हो रहा था। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं था। अब जब परमिशन भी था, पेपर का भी अब इतना कमी नहीं था, तो प्रभुपाद जी के पास पैसा नहीं था उसको छापने के लिए, लेकिन थी तीव्र इच्छा। और ऐसे करते करते फिर बाकी संघर्ष हम सब बहुत कुछ उसके में जानते हैं। सुमति मुरारजी से मिले, प्रभुपाद अमेरिका गए। अब अमेरिका जब गए प्रभुपाद 1965 के अंदर, 13 अगस्त ऐसे उनकी उड़ान, मतलब उड़ान कह रहा हूँ, जलदूत के अंदर बैठे थे, और 15 या 20 सितंबर के आसपास 1965 में श्रील प्रभुपाद पहुंचे, और वहां उन्हें गोपाल अग्रवाल लेने के लिए आए थे, प्रभुपाद जी के मित्र के पुत्र थे वे, बटलर पेंसिल्वेनिया। वहां पे सैली अग्रवाल और गोपाल अग्रवाल के घर पे प्रभुपाद जी रहे, और सब जानते हैं उसी फ्रिज के अंदर मांसाहार भी रखा होता था, प्रभुपाद जी भी उसी में अपना भोजन, उसी फ्रिज से ही उनको अपने खाद्यान्न लेने पड़ते थे। और प्रभुपाद फिर भी जगह जगह पूरा अमेरिका कल्चर को स्टडी कर रहे थे, जहां जहां मौका लगता था श्रील प्रभुपाद स्ट्रगल करके प्रवचन दे रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, अपनी पुस्तकों के को बांट रहे थे, और पुस्तकें लिख भी रहे थे साथ साथ, जो है व्याख्या उस पर टिप्पणी भागवतम पे लिख रहे थे। और यहाँ पे लगभग 4-5 महीने रहने के बाद प्रभुपाद ने एक चीज रियलाइज किया कि ऐसे ओकेशनल लेक्चर से ज्यादा कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, और तो उन्होंने सोचा कि अब कोई और जगह चूज करनी चाहिए। हालांकि बटलर पेंसिल्वेनिया में श्रील प्रभुपाद को लोग जानने लगे थे, लेकिन यहाँ पे कोई बहुत गंभीर ऑडियंस नहीं था जो कृष्ण भवन आंदोलन को बहुत अच्छे से स्वीकार करे। तब प्रभुपाद ने निर्णय लिया कि मैं कहीं और अपने आप को रिलोकेट करूंगा, कहीं और मैं अपना आवास स्थान बनाता हूं। और तब उनके न्यूयॉर्क के अंदर उनके परिचित थे कौन, डॉक्टर मिश्रा। तो डॉक्टर मिश्रा को उन्होंने लिखा और उन्होंने उनका आमंत्रित किया कि ठीक है आप मेरे साथ आइए और रहिए। अब ये डॉक्टर मिश्रा थे पूरे मायावादी, और प्रभुपाद जी को उन्हीं के साथ कमरे में रहना था। तो अब प्रभुपाद ऐसे अपने चरित्र के अपने आचरण से तो बहुत ही मधुर थे, प्रसाद बना के उनको खिलाया करते थे, और जो है बातचीत करने बहुत मधुर थे, लेकिन सिद्धांत तो बिल्कुल अलग था ना? और गौड़ीय वैष्णव के लिए मायावाद सिद्धांत सुनना तो बहुत, मतलब वो सहन नहीं कर सकता, असहनीय वस्तु है। तो प्रभुपाद को उसके साथ रहना पड़ता था। और दूसरी बात, जब प्रभुपाद वहां प्रवचन किया करते थे तो डॉक्टर मिश्र स्वाभाविक रूप से सिद्धांत डिफर करेगा तो इंटरफेयर किया करते थे। सो प्रभुपाद नॉट वेरी फ्री टू प्रीच, तो प्रभुपाद को वहां से भी निकलना पड़ा। फिर उसी बिल्डिंग के अंदर प्रभुपाद ने कमरा नंबर आई थिंक 301 या 501 ऐसे वहां पे प्रभुपाद रहने लगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद स्वतंत्र थे प्रचार करने के लिए कि हाँ कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को आमंत्रित कर सकते हैं। छोटा सा ये बहुत ही छोटा लंबा सा संकरा सा वो कक्ष था, लेकिन प्रभुपाद वहां पे बैठ के जो है अपना उन्होंने प्रचार कार्य, उस प्रचार कार्य को छोड़ा नहीं। उसका स्पिरिट तो इतना तीव्र था प्रभुपाद के अंदर, लेकिन वहां पे एक दिन कमरा नंबर 307 था वो, इससे पहले उनके स्टूडियो 501 नंबर में रहते थे वे डॉक्टर मिश्रा के, लेकिन उसको छोड़ा प्रभुपाद ने कि स्थिति अनुकूल नहीं है। और छोड़ने के बाद श्रील प्रभुपाद कमरा नंबर 307 में आए, तो एक दिन प्रभुपाद बाहर गए थे किसी कार्य से, वापिस आए तो क्या देखा कि उस कमरे में चोरी हुई हुई है, और वहां पर उनका टाइपराइटर और एक और चीज चोरी हो गया था शायद, तो दो उनका और कुछ कुछ और वस्तुएं भी चोरी हो गई थी। तो प्रभुपाद अब देखा तो उन्होंने वहां के चौकीदार को बताया कि देखो ऐसा चोरी हो गई है, लेकिन चौकीदार के व्यवहार से वे समझ गए क्या कि हो ना हो ये चोरी किसने की है, इसी चौकीदार ने की है। तो और प्रभुपाद भी कुशल थे, बिजनेसमैन थे, बिजनेस डीलिंग के अंदर ऐसे इनोसेंट नहीं थे। जब सनातन गोस्वामी जब ईशान वहां गए थे, जब सनातन गोस्वामी जंगल को पार कर रहे थे, तो एक होटल के मालिक ने उनकी बहुत आवभगत की, तो ये समझ गया अति भक्ति चौरेर लक्षण, टू मच थाइन इज डिवोशन ऑफ थीफ। तो प्रभुपाद जी वो सनातन गोस्वामी समझ गया एकदम, ईशान से पूछा अपने सेवक से कुछ कीमती वस्तु रखे हो अपने पास, तो बोले हाँ 7 सोने के सिक्के हैं। तो बोला कि 7 सोने के सिक्के नहीं है, तुम्हारे मृत्यु का की घंटी है बेसिकली है। तो उन्होंने वो सिक्के लिए और उस जो होटल के मालिक को दे दिए, तो उसने बोला कि देखो मुझे पहले से मालूम था तुम्हारे पास 8 सिक्के हैं, तो आज रात को मैं तुम्हें इनके बदले मार देता, अच्छा हो तुमने मुझे खुद ही दे दिया, अच्छा क्या हुआ कि तुमने मुझे पाप कर्म से बचा लिया। वो कह रहे सनातन गोस्वामी को नहीं तो तुम्हें मारने का एक पाप करना पड़ता। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी वापस लौटा दिए, बोले अब मैं तुम्हारी सेवा करके पुण्य कर्म करूंगा। सनातन गोस्वामी ने बोला कि नहीं भाई तुम रख लो, आज तुम मारते थे कल कोई और मारेगा, इससे बड़े तुम ही रख लो। और पहाड़ पार करने के बाद ईशान को उनको पता लग गया कि एक सिक्का और है अभी भी इसके पास, तो बोला अभी तुम घर वापस जाओ, जो है तुम वापस चले जाओ और मैं आगे निकल जाता हूँ। तो ऐसे प्रभुपाद वॉज वेरी इंटेलिजेंट, तो प्रैक्टिकल डीलिंग्स उन्होंने बहुत देखे थे, तो समझ गए कि यही चोर है, लेकिन कोई प्रूफ तो है नहीं, सबूत तो है नहीं कि प्रूफ कर सके और संपत्ति वापस ले सके। और प्रभुपाद जी को भी दूसरा डर लगा कि आज इसने चोरी की है, कल कौन रोकेगा इसे चोरी करने से, कल कुछ और भी चोरी कर सकता है, तो यह जगह सेफ नहीं है। अब प्रभुपाद ने सोचा अब क्या किया जाए, तो फिर प्रभुपाद जगह ढूंढ ही रहे थे, तो दो चार कुछ लोग उनके परिचित अभी हुए थे, कुछ लड़के जो उनके वेल विशर्स थे, कोई भी अभी तक प्रैक्टिकली एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो प्रभुपाद का कट्टर अनुयायी हो या दृढ़ता अनुयायी हो, बस सब मित्र वेल विशर आते थे प्रवचन सुनने के लिए, लेकिन प्रभुपाद के अंदर उनके अंदर भी स्पार्क दिखाई पड़ता था कि नहीं ये अच्छा है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति थे हार्वे कोहेन, तो उन्होंने अब हुआ क्या था, इसी दौरान इनके इनका भी एक स्टूडियो था, ये एक वैसे चित्रकारी इत्यादि में इनका रुझान था, और ये एक सभ्य व्यक्ति थे, ऐसे हिप्पी नहीं थे ये, और इनके इनके जो स्टूडियो तो नहीं बोलेंगे स्टोर लॉफ्ट, इनके लॉफ्ट के अंदर भी कुछ दिनों पहले चोरी ही हुई थी, तो ये बहुत हतोत्साहित हो गए थे। तो इन्होंने सोचा वापिस अब मैं ये छोड़ के कैलिफोर्निया चले जाऊंगा, तो ये विचार किया था। तो तभी देखा कि स्वामी जी भी कमरा ढूंढ रहे हैं, तो इनकी इच्छा हुई कि मैं ये कमरा जो है, जो मेरा कमरा है, ये किसको देता हूँ, स्वामी जी को दे देता हूँ, स्वामी जी रहे यहाँ पे। और जिस दिन वह जाने वाले थे, मतलब कल जाने वाले हैं, तो आज के दिन एक और व्यक्ति से उनकी संयोगवश अलग अलग जगहों पे उसी व्यक्ति से बार बार मुलाकात हुई, इसका नाम था डेविड। तो ये जो डेविड है, इसने ये भी कमरा ढूंढ रहा था एक, तो मिला हार्वे कोहेन से। अब प्रभुपाद जी तो शायद उतना राशि नहीं दे पाते हैं, तो अब एक ही दिन में अलग अलग जगह पे बार बार मुलाकात हुई, तो हार्वे कोहेन को लगा कि यह कमरा मैं डेविड को दे देता हूं, और डेविड को एक कंडीशन पे दिया कि इस कमरे में क्या है, स्वामी जी भी साथ में रहेंगे। तो वो मान गया कि ठीक है, डेविड मान गया कि ठीक है, अच्छा है, स्वामी जी साथ में रहेंगे, हम साथ में रह लेंगे। अब प्रभुपाद जी ने आके इस डेविड के साथ कमरा शेयर किया, और जो है उस कमरे के अंदर जो है, तो अभी देखिए प्रभुपाद जी बटल पेंसिलिया में रहना पड़ा, फिर डॉक्टर मिश्र एक मायावादी के साथ, और फिर एक जिस कमरे में रहे वहां चोरी हो गई, और अब एक नशेड़ी के साथ रहना पड़ रहा है। नशेड़ी भी नहीं, अगर हमारी भाषा में बोला चरसी है ना, या स्मैकी जो होते हैं है ना, तो वो डेविड को ये आदत थी बहुत ज्यादा अब। लेकिन साथ साथ प्रभुपाद के संग से और उनके व्याख्यान सुन के डेविड को वो कृष्ण भावना सिद्धांत के अंदर बहुत रुचि भी ले रहा था, सुनता थे प्रभुपाद जी से और कुछ कुछ अच्छी आदतों को भी अनुकूल कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने अपना जो कॉरेस्पॉन्डेंस उनका भारत में होता था अपने गुरु भाइयों से या अन्य लोगों से, तो उनको लिखते थे इस डेविड के बारे में कि एक युवक बहुत अच्छे से ले रहा है कृष्ण भावना स्वीकार कर रहा है। प्रभुपाद इतने मतलब एनकरेज फील करते थे, उत्साहित हो जाते थे कि हाँ कोई तो इसको स्वीकार कर रहा है। और इस डेविड के बारे में काफी लेटर, तीन कई लेटर उन्होंने लिखे इस, मतलब हर लेटर के अंदर कहीं ना कहीं अपने आंदोलन के बारे में लिख रहे थे। लेकिन इस डेविड को एक बुरी आदत थी, क्या थी, मतलब कई बुरी आदतों में एक विशेष बुरी आदत थी जो छोड़ नहीं पा रहा था, वो थी ये नशा करने की, ड्रग्स लेने की। और उसे ही लगता था कि ये एक जो है गॉड रियलाइजेशन का या आत्म साक्षात्कार का एक अच्छा माध्यम है। प्रभुपाद जी बार बार समझाते थे लेकिन उसको समझ नहीं आता था। जैसे बोलते ना, उपदेश मूर्खाणाम प्रकोपाय नशांत। ये अब मूर्ख आदमी को यदि उपदेश देते हैं तो क्या होता है, वह और क्रोधित होता है। जिस प्रकार सर्प को यदि आप दूध पिलाते हैं तो क्या होता है, उसका और विषवर्धन होता है। तो ऐसे प्रभुपाद ने 3-4 बार समझाया उन्हें कई बार कि नशे की आदत ठीक नहीं है। प्रभुपाद सहन कर रहे थे, लेकिन कभी कभी अच्छे मूड में होते थे तो उसको समझाते थे, लेकिन वो इसको नहीं छोड़ पाता था। और धीरे धीरे इस एक आसक्ति के कारण वे प्रभुपाद से दूर होने लगे। और एक रात फिर बहुत भयानक चीज हो गया, उन्होंने बहुत भारी मात्रा में ड्रग्स ले लिए और बिल्कुल पागल जैसे हो गए और पूरे उस लॉफ्ट के अंदर घूमने लगे, गुर्राने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे, और ऐसे करते करते लाल लाल आंखें बिल्कुल नशे में धुत। और प्रभुपाद जी जिस हाफ पार्ट में रुके हुए थे वहां पे गया और प्रैक्टिकली प्रभुपाद को एक तरीके से मारने के लिए दौड़े। तभी प्रभुपाद वहां से सारा सामान वहीं छोड़ के जो है प्रभुपाद भाग करके सड़क पे आ गए। अब सोचिए, कुछ सामान नहीं, कुछ पता नहीं कहाँ जाना है, प्रभुपाद को इस परिस्थिति से गुजरना पड़ा। तो अब देखा कि अब क्या करूं मैं, तो प्रभुपाद सोचते लेकिन रात होने से पहले कुछ तो ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। तो प्रभुपाद के एक और परिचित थे, उनका नाम था कार्ल यर्गन्स। तो उनको संपर्क किया, उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। और ये कार्ल यर्गन्स जानते थे कि जो है डेविड की इस प्रकार से नशा मतलब ड्रग्स लेने की इत्यादि आदत है, तो ये प्रभुपाद से थोड़ी सिंपैथी रखते थे, सहानुभूति रखते थे। तो इन्होंने प्रभुपाद को कहा कि आप हमारे साथ रुकिए। और फिर शाम के समय जाकर प्रभुपाद ने खुद तो नहीं गए, लेकिन इनको बोला कि आप जो पुराने लॉफ्ट से डेविड के कमरे से आप जो है कुछ कुछ सामान ले आइए, ये फलाने फलाने सामान जो है आप लेकर के आ जाइए। अब जहां ये रुके थे वो जगह पहले वाले जगह से काफी अच्छी थी, लेकिन और जो उनका रीडिंग रूम था काल का, एक उन्होंने रीडिंग रूम बनाया था, तो वो प्रभुपाद जी को दे दिया। और वहां पे साथ में काल के साथ कौन रहती थी, उनकी पत्नी जिसका नाम था ईवा। अब ये जो ईवा थी, इसने देखा अब प्रभुपाद जी वहां पे, अब प्रभुपाद जहां भी थे वो जगह प्रचार का क्षेत्र ऑटोमेटिकली बन जाता था। इनफैक्ट डेविड के लॉफ्ट में पास मंडे वेडनेसडे फ्राइडे भगवता क्लासेस किया करते थे, तो लोग मिलने के लिए आते थे प्रभुपाद को, प्रभुपाद उन्हें उपदेश दिया करते थे, सिखाते थे। सिमिलर चीज यहां भी होने लगी, लोग आने लगे प्रभुपाद के। और जो सबसे रुचि लेने लगा वो कौन था, कार्ल। इनको बहुत रुचि आने लगी। प्रभुपाद जब भी भोजन बनाने जाते रसोई में तो ये साथ में आ जाते, प्रभुपाद रिक्वेस्ट करते मुझे मृदंग सिखा दीजिए, और घंटों घंटों प्रभुपाद से बात किया करते थे। तो ईवा को बहुत चिढ़ मचने लगी जो है कि एक तो पहले ये कार्ल इस अमरीकी सभ्यता को छोड़ ना दे, नंबर एक, और फिर मेरे से अलग भी ना हो जाए। तो उसे स्वामी जी के प्रति बहुत गुस्सा आने लगा। और प्रभुपाद जी भी समझ गए थे कि और अब इनको क्या था कि ये बहुत स्वच्छंद विचारों की थी। अब घर में कुत्ते थे, बिल्लियां भी रखी थी, और जो है इनको स्मोकिंग करने की बहुत ही बुरी लत थी जो है। और ये जानती थी कि प्रभुपाद के सिद्धांतों को थोड़ा बहुत सुन ही लिया था, मांसाहार नहीं, व्यभचार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं। तो आप अमेरिका में रहकर कोई ये बात करते, तो लगा ये स्वामी जी पूरा का पूरा जो है हमारे इन स्थिति को छुड़वा देंगे। तो विचार कर लिया कि और साथ साथ अब इनको ये भी था कि और कुछ नहीं तो ये काल को बिगाड़ देंगे, मतलब सो कॉल्ड जो है। तो अब ये चीज प्रभुपाद भी नोट कर पाए थे और जो लोग आ रहे थे वे भी देख पा रहे थे कि डे बाय डे जो है यहाँ पे भी ये एक प्रकार का शीत युद्ध बढ़ते जा रहा था। प्रभुपाद तो अजात शत्रु हैं, उनकी तरफ से तो किसी को शत्रु नहीं देख रहे थे प्रभुपाद तो, लेकिन इस ईवा को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तब फिर फाइनली अब ये देखते हुए काल के पास भी एक तरफ प्रभुपाद की रुझाव है, एक तरफ अपनी पत्नी की तरफ रुझाव है और दोनों अगेंस्ट जा रहे हैं, दोनों को एक साथ नहीं चुन सकते थे वे। तो उन्होंने भी फाइनली और ये देखा कि इतनी ज्यादा भारतीय सभ्यता मैं भी नहीं स्वीकार कर पाऊंगा, इतना शुद्ध जीवन तो प्रभुपाद से वे भी अलग होने लगे, लेकिन सिंपति जरूर रखते थे। और फिर प्रभुपाद से प्रभुपाद ने भी नोट किया तो प्रभुपाद ने बोला कि मैं जगह चेंज करता हूं। तो काल ने थोड़ा मदद किया और एक और भक्त थे उन्होंने भक्त तो उन्होंने फिर प्रभुपाद से मिल करके वे प्रभुपाद के साथ वे गए कहां पर, माइकल ग्रांट से मिलने के लिए। ये माइकल ग्रांट एक काफी ज्यादा आने वाले लोगों में से थे जो बाद में कौन बने, मुकुंद गोस्वामी जो है। तो इनके पास श्रील प्रभुपाद गए कि देखो ऐसे ऐसे मुझे घर बदलना है। तो अब मुकुंद गोस्वामी माइकल ग्रांट को लगा कि भाई अब हमारे घर में तो जगह नहीं है कि प्रभुपाद जी को स्टे कर सके। तो बोला मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, इतना जरूर करूंगा कि आपके लिए मकान खोजता हूँ। और अब माइकल ग्रांट एक बहुत ही रिसोर्सफुल व्यक्ति थे तो इन्होंने रात शाम तक ही सारे इश्तेहार वगैरह पढ़ करके खोजा, बातचीत करी और फिर एक जगह उनको जो है देखने को मिली। और वो जगह कौन सी थी, 26 सेकेंड एवेन्यू। यहाँ पे आके जो है ये एक पहले स्टोर फ्रंट था और ये जगह माइकल ग्रांट ने ढूंढी और $125 इसका मासिक भाड़ा था। तो सब प्रभुपाद जी के अभी तो कोई दीक्षा नहीं हुई थी किन्हीं भक्तों की, तो जितने वैल्यू चलते कुछ कुछ भाड़ा इकट्ठा करके उन्होंने जो है ये प्रभुपाद जगह ठीक लगी तो जो है। और यहाँ पे एक पहले स्टोर एक दुकान थी जो है गिफ्ट शॉप, तो सब कुछ तो उसका हटा दिया था, एक बहुत ही फेमस गिफ्ट शॉप थी एक्चुअली, तो वो बंद हो गई थी तो लोग अभी दुखी होते थे कि ये दुकान की बंद हो गई है। तो उस दुकान की आखिरी कोई जो कह सकते हैं एक वस्तु वहां पर शेष रह गई थी वो था एक बोर्ड, उस बोर्ड पे क्या लिखा था, मैचलेस गिफ्ट्स है ना। तब रियल मैचलेस गिफ्ट जो कृष्णा कॉन्शियस कृष्ण भावनामृत जो है उस स्टोर फ्रंट से वास्तुतः पूरे विश्व में प्रसारित होने वाला था। और ये जगह माइकल ग्रांट ने ढूंढा और फिर प्रभुपाद जी यहाँ पे सेटल हुए। तो ये जगह प्रचार केंद्र के लिए तो एक अच्छी जगह लग रही थी, उपयुक्त जगह लग रही थी, लेकिन प्रभुपाद के रहने के लिए कोई आवास स्थान नहीं था ये प्रॉपरली। दुकान थी तो दुकान में थोड़ी रहने की जगह होती है। तो उस जो कहते एस्टेट प्रॉपर्टी एस्टेट डीलर था प्रॉपर्टी डीलर, तो उसने बताया कि मतलब कुछ ही कदमों के ऊपर एक और कमरा है, अगर $71 प्रति मास उसका भाड़ा देंगे तो वहां पे वो प्रभुपाद जी रह सकते हैं वहां पे। तो कुल $196 के अंदर जो है ये पूरी डील हुई कि ठीक है पर मंथ जिसमें स्टोर फ्रंट और प्रभुपाद जी का जो ये रूम है यहाँ पे रहने के लिए। अब प्रभुपाद भी देखिए क्या किया उन्होंने, उस प्रॉपर्टी डीलर को ही प्रचार करने लगे, बातचीत करने लगे। और प्रभुपाद की योजना थी जब प्रभुपाद बावरी के अंदर थे यानी डेविड के लॉफ्ट के अंदर, तभी प्रभुपाद जी जो है एक कानूनी रूप से संस्था को मतलब रजिस्टर करने के लिए सोचा करते थे। तो तीन चार पांच महीने पहले प्रभुपाद प्लान चल रहा था, यहाँ आके वो प्लान जो है बिल्कुल और ज्यादा तीव्र भाव लेने लगा। तो प्रभुपाद जी ने इस प्रॉपर्टी डीलर में एक व्यक्ति देखा कि ये हमारी सोसाइटी का ट्रस्टी बन सकता है, तो उसको प्रचार किया और मधुरवर से कन्विंस किया और वो ट्रस्टी बनने के लिए तैयार हो गया। तो $196 वो रेंट लेगा और $20 पर मंथ डोनेशन देगा एज अ ट्रस्टी। तो पहला ट्रस्टी श्री प्रभुपाद जी को मिला उस प्रॉपर्टी डीलर के रूप के अंदर। और फिर जो है प्रभुपाद जी कुछ कुछ बोला करते थे, कभी कभी चर्चा किया करते थे। अब वो सारे वेल विशर्स थे तो उनको प्रभुपाद जी 11 जुलाई को ये बात कर रहे हैं एक दिन उपदेश देते हुए, हम अपनी सोसाइटी को इस्कॉन के नाम से पुकारेंगे। प्रभुपाद विनोदपूर्ण भाव से हंस पड़े जब उन्होंने पहले पहल यह नाम गढ़ा था। बावरी पर रहते हुए ही उन्होंने अपनी सोसाइटी के संस्थापन के संबंध में कानूनी कार्यवाही आरंभ कर दी थी किंतु कानूनी कार्यवाही आरंभ करने के पूर्व भी वे अपने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ के विषय में बातें करते रहते थे और इस तरह यह नाम भारत को लिखे गए पत्रों में और विलेज वॉइस पत्रिका में प्रकट हो चुका था। एक मित्र ने ऐसा नाम सुझाया था जो पश्चिम के देश लोगों के लिए अच्छा था, वह था इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस, लेकिन प्रभुपाद ने कहा नहीं, कृष्ण कॉन्शियसनेस। क्यों? क्योंकि गॉड कॉन्शियसनेस बहुत ही अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है कि गॉड कौन है, लेकिन कृष्ण बहुत ही वैज्ञानिक है और यथार्थ है। तो गॉड कॉन्शियसनेस आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर था और हालांकि यदि पाश्चात्य लोग नहीं जानते थे कृष्ण ईश्वर हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ हर कस्बे हर गांव में उनकी महिमा को फैलाकर उन्हें बताएगा। लोग नहीं जानते कृष्ण भगवान है तो अच्छा है ना, इसकॉन सोसाइटी के सदस्य बताएंगे लोगों को कृष्ण भगवान है। अभी कृष्ण कॉन्शियसनेस ये वर्ड कहां से प्रभुपाद ने डेवलप किया है, तो ये एक श्लोक है पद्यावली से रूप गोस्वामी द्वारा लिखित, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र मूल्यम एक कलम लौल्यम कोटि जन सुकृति न लभ्यते। तो उसके अंदर आता है कृष्ण भक्ति रस भाविता, जिसका अर्थ है कृष्ण की भक्ति संपन्न करने के मधुर रस में निमग्न रहना। ये प्रभुपाद जी ने यहां से वर्ण निकाला कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है, जिसका संस्कृत भाषांतर है कृष्ण भक्ति रस भाविता और हिंदी भाषांतर है कृष्ण की भक्ति संपन्न करने के मधुर रस में निमग्न रहना। किंतु इस्कॉन को एक लाभ न कमाने वाले कर मुक्त धर्म के रूप में विधिवत पंजीयन के लिए धन और एक वकील की आवश्यकता थी। कार्ल इयरजेंस ने धार्मिक राजनीतिक सामाजिक कल्याणकारी संगठनों के निर्माण का कुछ अनुभव प्राप्त कर लिया था और जब वह बौरू में प्रभुपाद से मिला था तो उनकी सहायता करने को वह राजी हो गया था। तो प्रभुपाद वहीं से शेयर किया करते थे तो उसने कुछ कुछ कार्रवाई की थी और अपने वकील स्टीफन गोल्डस्मिथ से संपर्क कर लिया था। अब प्रभुपाद इस गोल्डस्मिथ इसको ही प्रचार करना चालू किया। प्रभुपाद ने वकील था एक जीव यहूदी नविवक्त था, उसकी पत्नी थी, दो बच्चे थे और ये आध्यात्मिक आंदोलन रुचि भी रखता था। तो प्रभुपाद से मिला और प्रभुपाद ने इनको जो है संस्था को क्या संस्थापन करना है, कर मुक्ति है और प्रभुपाद के लिए अमेरिका में वीजा है, आप्रवासन स्थिति और कृष्ण भावना के विषय में विचार विनिमय किया। प्रभुपाद ने खुद बनाया हुआ प्रसाद इनके परिवार को खिलाया तो उनको बहुत अच्छा लगा जो है। और अब ये जो गोल्डस्मिथ है आया तो अपने कार्य से, लेकिन प्रभुपाद से मिलकर रोज उनकी शाम को जो क्लास होती थी उसमें आता था, सुनता था। तो क्लास में एक ही ऑडियंस था जो हिप्पी नहीं था, बाकी सारे हिप्पी थे, वो थे ये वकील गोल्डस्मिथ। और फिर प्रभुपाद इनसे बात करते तो एक रात को जब सारी कानूनी कार्यवाही करके आए थे पूरे, तो कार्यक्रम के बाद जो है गोल्डस्मिथ जो है प्रभुपाद जी के व्याख्यान और कीर्तन में आए और प्रभुपाद ने जो है भगवद गीता पे ज्ञान दे रहे पे व्याख्यान दे रहे थे और जो है प्रभुपाद ने उसी लेक्चर के अंदर जब देखा गोल्डस्मिथ बैठे हुए हैं आज कानूनी कार्रवाई करने के लिए आए हैं, तो एक वकील का एक दृष्टांत प्रस्तुत किया उन्होंने, गोल्डस्मिथ का तो नहीं लेकिन एक वकील का, कि किस प्रकार अच्छा वकील होता है तो वो कैसे अपनी दलीलों से जो है अपने आर्ग्यूमेंट से पूरे कानून के मतलब अर्थ को चेंज कर सकता है पूरा। तो फिर प्रभुपाद ने उनका गोल्डस्मिथ को भी सबसे इंट्रोड्यूस कराया और फिर प्रभुपाद गोल्डस्मिथ खड़े होते हैं और वहां एकत्रित लोगों को एक अनाउंसमेंट करते हैं। और वे क्या अनाउंसमेंट करते हैं कि देखिए स्वामी जी आज अपने आंदोलन को जो है कानूनी रूप से पंजीकरण कर रहे, रजिस्टर कर रहे हैं, तो हमें आप में से कुछ लोगों के क्या चाहिए, सिग्नेचर्स चाहिए, यू हैव टू बी ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज। अभी सब हिप्पीज हैं, कभी आने वाले लोग हैं, तो आप प्रभुपाद ने कहा हाँ वे सब यहाँ पे उपस्थित हैं, आप उनके पते ले लो, एड्रेस वगैरह एड्रेस प्रूफ वगैरह आप ले लीजिए। तो गोल्डस्मिथ ने बोला ठीक है मैं अभी ले लेता हूँ। तो प्रभुपाद ने ऐसे बोला आप ले सकते हैं और एक जो स्टूडेंट थे बिल आप अपना पता दे दो, रेफेल तुम अपना दे सकते हो और डॉन और रॉय और श्रीमान ग्रीन आप सब अपने पते दे दीजिए। तो ना ऐसे प्रभुपाद ने एक भी मतलब फिक्स्ड मेंबर ना होने के बाद भी प्रभुपाद जो है इस सोसाइटी की रचना कर रहे हैं। क्यों?
क्योंकि उनका पूर्ण विश्वास था। और कुछ समय पहले उन्होंने एक बस कंडक्टर रूबेन को बोला था कि हमारे पास हजारों मंदिर हैं, लाखों भक्त हैं, करोड़ों पुस्तकें हैं, लेकिन सिर्फ ओनली टाइम इज सेपरेटिंग देम, सिर्फ समय उनको जो है दूर कर रहा है। लेकिन प्रभुपाद ने देखिए ऑर्गेनाइज करना बहुत, अभी एक भी सदस्य नहीं है उनके अलावा इस संस्था के अंदर फुल टाइम सदस्य, मतलब एक ही सदस्य है वह शिला प्रभुपाद। और इतने बड़े विजन को रखते हुए प्रभुपाद ने जो है इस संस्था को रजिस्टर किया कि आगे जाके जब संस्था बनानी है तो एक कानूनी रूप से ये बनाना बहुत जरूरी है, कोई भावुक कल्ट ना हो और साथ साथ डोनेशंस के लिए टैक्स मुक्ति इत्यादि, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में करना बहुत आवश्यक है। और ये विचार उनको कहां से आया था, ये विचार उन्होंने गौड़िया मठ के विभाजन से देखा था और भक्तिसान सरस्वती ठाकुर को भी देखा था किस प्रकार उन्होंने जो है बहुत प्रॉपरली गौड़िया मठ को रजिस्टर इत्यादि किया था। और ऑफकोर्स कुंज बिहारी नाम के जो भक्त ठाकुर के शिष्य थे वे सारे इस प्रबंधन के कार्य को देखा करते थे। लेकिन प्रभुपाद ने, चाहे प्रभुपाद खुद ट्रांसजेंडर होंगे, लेकिन इतने सारे कष्टों को सहन करने के बाद भी प्रभुपाद ने कहीं कोई प्रैक्टिकल कसर नहीं छोड़ी थी, कोई लापरवाही नहीं बरती थी कि, और बहुत बड़ा विजन उन्होंने रखा हुआ था। और फिर तो फिर लोग जो हैं, कई लोग जो लोग अपना सिग्नेचर दे देते हैं और कई लोगों ने तो पढ़ा भी नहीं होता है। और ये वो लोग हैं जो स्वामी जी से सहानुभूति रखते हैं और तब उसका ये है उनकी सहायता और इन लोगों के मन में पर्याप्त सम्मान है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, सर्वप्रथम न्यासी संघ जो संघ का अगला वार्षिक अधिवेशन होने तक एक वर्ष के लिए पद अधिकारी रहेंगे। न्यासी मतलब ट्रस्टी, ट्रस्टी जो है माइकल ग्रांट, ये एक साल के लिए फर्स्ट जो है फर्स्ट इस का एनुअल कॉन्फ्रेंस होने तक तो जो है ऐसा। और इस माइकल ग्रांट ने बिना कागज को पढ़े सिग्नेचर किया था और अपना पता भी लिख दिया था। फिर और साथ में माइक की महिला मित्र जेन और जेम्स ग्रीन हैं, इनमें से किसी का भी इरादा धार्मिक संघ के ट्रस्टी के रूप में किसी भी औपचारिक दायित्व को गंभीरतापूर्वक हाथ में लेना नहीं था, लेकिन माइकल ग्रांट ने किया। किंतु स्वामी जी के प्रगतिशील संघ को कानूनी अस्तित्व में लाने के लिए अपने हस्ताक्षर में उनकी सहायता करने में उन्हें प्रसन्नता है। फिर अगले आने वाले 3 साल के लिए भी प्रभुपाद ने जो है तो ये फर्स्ट ग्रुप बना ट्रस्टीज का, माइकल ग्रांट और ये जेन और जेम्स ग्रीन। अगले साल के लिए जो ट्रस्टी का ग्रुप बनाया पॉल गॉर्डिनर रॉय और डॉन, और तीसरे वर्ष का ट्रस्टीज का भी नाम लिख दिया उन्होंने, कार्ल यर्जेंस, बिल एप्सिन और राफेल। अब आप देखिए जिनको ट्रस्टी बनाने में से एक को भी ठीक ठाक नहीं पता था कि ये 8-10 कागजों के अंदर लिखा क्या है, और स्वामी इतना बस उनको समझ में आया था पूरा कि स्वामी जी एक सोसाइटी बना रहे हैं बस, और कुछ समझ नहीं आया था कि हमें क्या करना है, स्वामी जी हमसे क्या चाहते हैं, और ये भी समझ नहीं आ रहा था क्यों। तो अटकल लगा रहे थे कि शायद यदि कोई बड़ा दान देगा तो टैक्स में एग्जम्पशन मिल जाएगा या धार्मिक सोसाइटी को जो लाभ मिलते हैं वो मिल जाएंगे, उनको लगा। लेकिन कौन दान देगा, यहाँ तो 196 रुपए मंथली रेंट ही निकल पा रहा है, सारे ये भिखारी हिप्पी हैं यहाँ पे, कौन बड़ा दान देगा। तो अब और गोल्डस्मिथ के अलावा किसी का इतना धन है ही नहीं तो देगा क्या। लेकिन प्रभुपाद जो है अपने भविष्य के लिए योजना बना रहे हैं और उनकी योजना कर छूट से कहीं अधिक है जो है ना। वे अपने आध्यात्मिक पूर्वजों की सेवा करने और शास्त्रों की भविष्यवाणी को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि एक आध्यात्मिक आंदोलन कलयुग में 10,000 वर्षों तक फलता फूलता रहेगा। अत्यंत विस्तार वाले कलयुग में 1960 ईस्वी का दशक एक शुद्र क्षण के समान है। तो इतने बड़े कलयुग के अंदर जो दिशा दिखाने वाला आंदोलन है ये चालू होगा और प्रभुपाद उसकी नींव रख रहे हैं कि 10,000 साल इस आंदोलन की नींव होगी। तो इस प्रकार से और फिर शिला प्रभुपाद ने बहुत ही सिस्टमैटिकली इस आंदोलन की रूपरेखा को तैयार किया, ये आंदोलन का उद्देश्य क्या है और कितने उद्देश्य हैं इस आंदोलन के, 7 उद्देश्य। तो मैं 7 उद्देश्य को हिंदी में पढ़ रहा हूं केवल ताकि हम सब प्रभुपाद जी फॉलोअर कम से कम आज अपने को रिकमिट कर सकें इस 7 आंदोलन के में किसी ना किसी प्रकार से भाग लेने के लिए। तो प्रभुपाद ने उसी समय लिखे और ये उन्होंने सिमिलर ही लिखे थे जब उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज झांसी में रजिस्टर किया था। तो पहला है, संपूर्ण मानव समाज में सुव्यवस्थित रूप में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करना और सभी मनुष्यों को आध्यात्मिक जीवन की प्रक्रिया में प्रशिक्षित करना, जिससे जीवन मूल्यों में असंतुलन रोका जाए और विश्व में वास्तविक एकता और शांति की स्थापना हो सके। कि कृष्ण भावनामृत जो एजुकेशन है, टू एजुकेट पीपल अबाउट टेक्निक्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। दूसरा, कृष्ण भावना का प्रसार करना, जैसा कि भगवद गीता और श्रीमद भागवत में उद्घाटित है। तीसरा, संघ के सदस्यों को एक दूसरे से जोड़ना और उन्हें आदि सत्ता कृष्ण के निकटतर ले जाना, और इस प्रकार सदस्यों और संपूर्ण मानवता में इस धारणा का विकास करना कि प्रत्येक जीवात्मा कृष्ण के गुणों का अंश है। ये के साधन का बहुत मुख्य लक्ष्य है कि लोग यूनाइटेड हो, किस भावना से, कि सब भगवान के अंश हैं। चौथा, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में उद्घाटित संकीर्तन आंदोलन या भगवान के पावन नाम के सामूहिक गायन की शिक्षा देना और उसे प्रोत्साहित करना, संकीर्तन यज्ञ। पांचवा, सदस्यों और संपूर्ण मानव समाज के लिए श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को समर्पित दिव्य लीलाओं के पवित्र धाम का निर्माण करना। छठा, सरलतर और अधिक सहज जीवन की शिक्षा देने के उद्देश्य से सदस्यों को एक दूसरे के अधिक निकट लेके आना। और आखिरी सातवां, उपयुक्त उद्देश्यों की सिद्धि को दृष्टि में रखते हुए पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा अन्य रचनाओं का प्रकाशन और वितरण करना। टू पब्लिश, पब्लिश एंड प्रिंट एंड पब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूट लिटरेचर्स टू फुलफिल द अबव सिक्स मेंशन एम्स बेसिकली। तो ये जो है, और उस समय किसी ने भी नहीं देखा था कि जो प्रभुपाद देख पा रहे हैं, लेकिन वो लोग सोच रहे थे कपोल कल्पना है, लेकिन प्रभुपाद उसे यथार्थ के रूप में देख रहे थे कि जो है ये एक सत्यता सत्य है जो आने वाला है, होने सिद्ध होने वाला है। और इस्कॉन के प्रचार से उस वस्तु की उपलब्धि होगी जिसे लीग ऑफ नेशंस और यूनाइटेड नेशन संस्थाएं प्राप्त नहीं कर सकी, जैसे विश्व में एकता और मानव जो है पूर्ण रूप से एकता। तो आज श्रील प्रभुपाद ने इस विजन को रखते हुए हमारे आध्यात्मिक पूर्वजों की धरोहर को एक बहुत ही सूटेबली पैकेज करके हमें प्रोवाइड किया है, ताकि आने वाली पीढ़ियों तक एज इट इज जो है ये उपहार कृष्ण भावनामृत का बहुत ही सरलता से उन तक पहुंच सके और वे स्वीकार कर सके। हमारा क्या कर्तव्य बनता है? दो प्रकार कर्तव्य, पहला इस उपहार को स्वीकार करना, और दूसरा, प्रभुपाद जी से उनके शिष्यों ने पूछा था, इज देयर सम वे प्रभुपाद वी कैन रिपे योर डेब्ट, एंड प्रभुपाद जो है उस समय ये बात सुनकर रोने लगे, और प्रभुपाद जी कह रहे द ओनली वे टू डिस्ट्रीब्यूट टू रिपे द डेब्ट इज बृहत मृदंगा, इज टू डिस्ट्रीब्यूट यू नो दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस फार एंड वाइड। उसी प्रकार से आप मेरे इस आभार को चुका सकते हो कि प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए इस कृष्ण भावना में विधि को स्वीकार करके, और बाद में इसको स्वीकार करें ताकि प्रभुपाद जो हैं वो देख सकेंगे हाँ जो उपहार में देने वाले लोग स्वीकार तो कर रहे हैं, और दूसरा जो है क्या इसको दूसरों को बांट करके। और अंतिम जो इस तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यह आंदोलन बढ़ता रहेगा, अधिकाधिक बढ़ता रहेगा, यदि इस आंदोलन के नेता विधि विधानों का पालन करते हुए और हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित कीर्तन करते हुए कृष्ण भावना भावित बने रहें। यदि हम भक्त लोग ये दो चीजें फॉलो करते रहेंगे, कृष्ण भावनामृत का, कृष्ण नाम का जप करते हुए, हरे कृष्ण जप करते हुए और कीर्तन करते हुए कृष्ण भावना भावित रहें, और दूसरा जो इस आंदोलन के विधि विधान है, नीति नियम प्रभुपाद ने दिए, उनका पालन करते रहेंगे, तो अनडाउटेडली आंदोलन आगे बढ़ता जाएगा। और कब खत्म होगा या कब ये इसको नुकसान हो सकता है? अंदर से ही नुकसान हो सकता है, हमारे द्वारा सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है, सबसे ज्यादा नुकसान भी हमारे ही द्वारा हो सकता है, यदि हम प्रभुपाद जी के द्वारा गए दिए गए नियमों का पालन नहीं करेंगे। तो आज के दिन हम प्रभुपाद को ये आभार के रूप में भेंट प्रकट कर सकते हैं कि उनके द्वारा दिए गए इस उपहार को हम स्वीकार कर सकें और अच्छे प्रकार से और डिटर्मिनेशन के साथ और जो है उत्साह के साथ में, और उसी उत्साह के दूसरों को हम बांट सकें। जय श्री प्रभुपाद की जय। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की जय। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ स्थापना दिवस की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।